ॐ नमस्ते
के आधार से जीव कहने अपना स्वरूप निश्चित करने जा रहे हैं। हम सब जीव है, आप समझेंगे हिंदी? हाँ,
हम तो समझते ही।
हाँ, आपके सामने जो पुस्तक है वो गुजराती है और बिल्कुल हिंदी से मैं पाना नंबर भी कहूंगी और आप उससे मिलान करके समझ सकोगी। बिल्कुल देखो, पुस्तक का नाम तो कर्णान योग है, वो कर्णान योग क्या है उसको भी हम देखेंगे। ये जो हम शब्द वापरते हैं ना, जैसे कर्म कहते हैं, बंध कहते हैं, उदय कहते हैं, और उसके बारे में कुछ न कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं। हम यथार्थ में उसका क्या स्वरूप है उसको जानने जा रहे हैं। तो हमारी उसके संबंध में बहुत कुछ खोटी कल्पना होती है, वो निकल जाती है और सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो पहले कर्णान योग क्या है उसको देखेंगे। देखो, अभी अभी हमने मंगलाचरण में सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। वो हमसे बड़े है कि हमसे कम है? हाँ बहन, वो हमसे कुछ बड़े है, क्योंकि हम बड़ों को नमस्कार करते हैं ना, कि वो हमसे कुछ हीन है इसलिए नमस्कार करते हैं? पक्का? हम अपने को कौन से किस आधार से बड़ा मानते, थोड़ा सोचेंगे। सिद्ध भगवान के पास कितने कर्म है? एक भी नहीं। क्योंकि सिद्ध कहना किसको? क्योंकि हम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम कहते हैं, तो अरिहंत और सिद्ध इनमें कुछ डिफरेंस होगा ना, क्योंकि दो नाम अलग है। तो अरिहंत भगवान को चार कर्म है, वो कौन से क्या है हम डिटेल में बाद में देखने वाले हैं, परंतु सिद्धों के पास एक भी कर्म नहीं, क्योंकि कर्म से रहित हो गए है। और हमारे पास कितने कर्म है उसका हिसाब हम लगाएंगे, आठ कर्म, उसके नाम, उसके सब स्पेशलिटी सब हम देखने जा रहे हैं। सिद्ध भगवान के पास शरीर है कि नहीं है?
नहीं।
और हमारे पास है, हम शरीर से ज्यादा है उनसे, है ना? सिद्धों के पास राग द्वेष होगा कि नहीं होगा?
नहीं।
वो भी नहीं है,
नहीं।
और हम तो राग द्वेष बिल्कुल भरपूर है उससे। अच्छा, सिद्धों के पास कुछ हाउस व्यूज?
नहीं,
कुछ नहीं है। ना हाउस है, ना कार है, ना कुछ स्टॉक है, ना बैंक बैलेंस है, ना डॉलर्स है, ना रुपए पैसा है, गहना। हम अपने को किस चीज से बड़े मानते हैं सोसाइटी में, किसको हम बड़ा मानते हैं? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बड़ा। तो हम अभी हमारी मान्यता सच्ची है कि नहीं हम देखेंगे। यदि वही क्राइटेरिया लगाएंगे तो सिद्धों से हम बड़े हो जाएंगे। ख्याल है ना? क्योंकि हमने अपना स्वरूप पहचाना नहीं है। हम स्वयं जीव है, आत्मा है, और हमने क्या माना है, यहाँ एक जीव है और यहीं पर कर्म भी है, शरीर भी है। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे विस्तार से, और वो भगवान की वाणी के आधार से देखेंगे। तो हमें अपना स्वरूप निश्चित करना है, क्योंकि हम देखते हैं ये तो जो कोई मनुष्य देह है वो इस बहुपुरता है, हम तो अनादि से है, अभी रहे हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। परंतु ये जो मनुष्य भव, ये जन्म से मरण, इतना हमारा स्वरूप नहीं है, हम इससे कुछ जुदे हैं। यहाँ जो जानने वाले वो हम हैं, और उसको कैसे समझना, सोचना, उसका कैसे विचार करना, कैसे आत्मा का अनुभव करना, ये सारी बातें हमें भगवान महावीर ने बताई है। ये मार्ग कौन बता सकता है कि जिसने स्वयं प्राप्त किया है। तो भगवान महावीर हमारे अंतिम तीर्थंकर हो गए हैं, तो उन्होंने जो उपदेश दिया, उनकी जो दिव्य ध्वनि खीरी, दिव्य ध्वनि समझते हैं, भगवान का जो उपदेश होता है, उनके कोई इच्छा नहीं होती, जैसे हमें आपको समझाने की इच्छा हुई, उनके कोई इच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं होती भगवान की इच्छा, वो फिर दूसरे लेक्चर में सुनेंगे, भगवान का स्वरूप वगैरह उसमें। क्योंकि अभी ऐसा है ना, विषय को हमने तो दो में बंटवारा किया है, नहीं तो झगड़ा हमारे में हो जाए, क्यों में तो हम कर्णानियोग के आधार से कर्म आदि अन्य अन्य जो बातें हैं उसकी बात यहाँ करेंगे। तो ये कर्णानियोग होता क्या है, ये करुणानुयोग नहीं है, कर्णानुयोग। आप वो हेडिंग देखना, पुस्तक का हेडिंग बाहर लिखा है ना, कर्णानुयोग। तो देखिए भगवान की वाणी में जो उपदेश आता है वो चार अलग अलग प्रकार से, यानी उसके अनुयोग कहते हैं, चार अलग अलग विषय और उसकी कथन पद्धति अलग होती है। तो भगवान का उपदेश चार अनुयोगों में हमें प्राप्त है। उसके नाम कौन कौन से है, तो आप में से कितने ही जानते भी होंगे, पर हम बिल्कुल बेसिक ऐसा लेंगे कि छोटा बच्चा भी समझे, क्योंकि कितने ने सुना नहीं है, है ना। तो हम बिल्कुल विस्तार से उसकी बात करेंगे। एक होता है प्रथमानुयोग, क्या कहा है तब, प्रथमानुयोग। एक है चरणानुयोग, एक है कर्णानुयोग, और एक होता है द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में तो तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि जो महान पुरुष हो गए पूर्व में, और जिन्होंने किस तरह से मुनि दीक्षा ली, किस तरह से अरिहंत बनकर वो सिद्ध हुए, उनकी कथाएं उसमें दी जाती है। संसार में पुण्य पाप का फल कैसे कैसे मिलता है, उसका भी उसमें कथाओं के द्वारा हमें पता चलता है। चरणानुयोग में जो मुनि है, जो श्रावक है, उनके आचरण की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है। जो सम्यक दृष्टि आत्मा का अनुभव करने वाले जीव है, उनको आगे का जो उनका श्रावक और मुनि जीवन है, उसमें उनके कैसे बिहेवियर होती है, आचरण कैसे होता है, तो उसको कहते हैं चरणानुयोग। तो चरणानुयोग का उपदेश की भाषा क्या है, ऐसा कीजिए, जैसे हम कहते हैं पानी छान कर पीना चाहिए, चाहिए वाली भाषा होती है, किसमें, चरणानुयोग। रोज देव पूजा करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, दान करना चाहिए, ऐसे चाहिए वाली बात होती है, तो चरणानुयोग की भाषा होती है, वो उपदेश की भाषा कही जाती है। कर्णानुयोग में क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ने जा रहे हैं, कर्ण यानी परिणाम, जीवों के परिणाम, अत्यंत सूक्ष्म परिणामों की चर्चा है, और उसके साथ साथ जो कर्म होते हैं वहां पर, जो कोई बंध होता है, कर्म रहते हैं उसमें, कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं, फिर वो उदय में आते हैं और फिर उसका फल मिलता है, उसकी सारी जो चर्चा है ये कर्णानुयोग में होती है। पूरे त्रिलोक की क्या रचना है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें पाई जाती है, कौन से जीव कहाँ है, कितनी संख्या में है, ये सारा जिसमें वर्णन होता है, जिसको त्रिलोक की रचना कहेंगे, तो ये सारा कर्णानुयोग में आता है। हम इतने डिटेल में देखने वाले नहीं, हम तो केवल कर्म की कुछ बातें यहाँ देखेंगे, और फिर और भी कुछ जो बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसमें आती है उसकी चर्चा करेंगे। एक होता है द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं, कि जिसको कहते हैं सिद्धांत, फैक्ट्स जो है, हमें कुछ कल्पना से भासित होता है, मन एक्चुअली में कुछ और होता है। यानी अभी यहाँ जो छह द्रव्य क्या है उसको बात बताई जाती है, सात तत्व नौ पदार्थों की बात बताई जाती है, ये राग द्वेष और मोह से हम दुखी है ये बातें बताई जाती है, निमित्त से कुछ कार्य नहीं, ये क्या है उसकी डेफिनेशन क्या, वो सारा जो बात वो बताई जाती है, मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करना, स्वर पर इसके संबंध में कैसे जानना और आत्मा की अनुभूति कैसे करना, ये सारे जो सिद्धांत है वो कहते हैं द्रव्यानुयोग। वो द्रव्यानुयोग की बातें ये लेंगे और मैं कर्णानुयोग की बातें लेंगे। जो बेसिक है द्रव्यानुयोग तो बेसिक है ही, उसको जाने बिना हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता, अपना कल्याण नहीं होता। साथ साथ यहाँ कर्म के द्वारा भी हम वही बातें कहेंगे। चारों ही जो अनुयोग अभी हमने देखे ना, कौन नाम बता सकेंगे, कौन कहना चाहे, हाँ कोई एक, हाँ बोलिए, हाँ प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, बहुत अच्छा, द्रव्यानुयोग, ये चार अनुयोग इसलिए रिपीट करते हैं ना, हमारा पक्का हो जाता है और बोलने से कॉन्फिडेंस आता है ज्यादा, है ना। ऐसा नहीं मानना कि हम इतने पढ़े लिखे हमको क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या स्कूल है क्या। हाँ बोलिए।
हमने द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणानुयोग, धर्म कथानुयोग ऐसे सीखा।
हाँ, नाम वही है, उसमें थोड़ा कुछ नाम का
पढ़ेतानुयोग
विषय वही होगा, क्योंकि इसमें गणित की मुख्यता है। कर्णानुयोग में बहुत सारे गणित है, ये सारे आपके भूमिति वगैरह के बड़े बड़े गणितों की इसमें चर्चा है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो कल यहाँ कोई नहीं आएगा। क्योंकि हमें बेसिक और उसकी टर्मिनोलॉजी पहले सीखेंगे, टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम होगी तो आगे का कुछ विषय हाथ में नहीं आएगा। और बिल्कुल इसमें कुछ विषय तो कर्म का है और कुछ जैसे जीव समाज, कौन कौन सी पर्याय में जीव पाए जाते हैं, कितनी इंद्रियों वाले है, ये निगोद आदि क्या होता है, कौन से काय वाले जीव होते हैं, प्राण कितने होते हैं, ये सभी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है। कुछ विषय तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को लग सकता है कि कुछ ये कर्म की बात है, और बिल्कुल ऐसा नहीं माना कि मैं कुछ नहीं समझती है समझता इसलिए मुझे नहीं पूछना, बीच में आप इन्हें प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बात समझने नहीं आती तो हम उसको रिपीट करेंगे, ऐसे कोई हमको दौड़ नहीं लगानी, रेस नहीं लगानी कि इतना हमको इतना विषय कवर करना है, हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अपने ज्ञान से समझने वाले हो, ये आगे चलकर द्रव्यानुयोग में सिद्ध करेंगे कि प्रत्येक जीव अपने योग्यता से समझता है, ख्याल में है ना। तो हमने समझा इसलिए आप समझे, ये बात ही नहीं तो आप समझने आए हो और ये समझ जाएंगे डेफिनेटली, परंतु हम आपको नहीं समझा सकेंगे, ये कैसे नहीं वो जादू इधर सब बता देंगे। हाँ हाँ, अब हम यहाँ सिद्धों के बारे में, हमें ये तो पता है कि वो कर्म रहित है, तो ये कर्म क्या होता है, वो कहाँ से आया जीव के पास, और उसको नष्ट करना है क्या, क्या करना है, क्या वो हमारा कुछ बुरा करता है, क्या वो हमारा सब डिसाइड करता है, हमें अमेरिका में भेजना, पैसे कमाना, ये जो कुछ है वो सारा कर्म हमारा गवर्न करता है, क्या करता है, ये हमको देखना है ना, क्या हम पराधीनता से कर्म के उसके अंडर रह रहे क्या है, ये हमें नक्की करना है। तो पहले में पहले कर्म क्या चीज है उसको देखेंगे। आपने देखा है कर्म को बेन, अंतराय कर्म को तो सबने देखा है ना। हाँ हाँ, आपने देखा है ना बेन, क्या एक्सपीरियंस किया है आपने, और महसूस क्या किया है आपने, ठंडा गर्म महसूस किया, क्या किया, कर्म को महसूस किया है ना, यानी क्या किया,
अनिष्ट का संयोग होता है तो हम कहते हैं कि
ये कुछ अनिष्ट बन रहा है,
अंतराय कर्म,
हाँ अंतराय कर्म है, क्योंकि वो सबका पहचान वाला है, क्योंकि जब स्वाध्याय में नहीं आ सकते ना, या नहीं आना चाहते तो भी वो अंतराय कर्म आता है, आड़ा वो सफेद होता है कि काला होता है,
it has no color.
It has no color.
But if it would have been a color, I would say it would be black.
वो सब अभी थोड़े दो चार पांच दिन में आप decide करने वाले हैं उसमें color है नहीं है वो मैं पहले से कुछ नहीं कहूँगी वो कौन से कलर का है क्या होता है उसमें कैसी टेस्ट है सब आपको पता चलेगा अपने अपने कर्म की टेस्ट लेके आप हमको बताएंगे ये इस टेस्ट का है तो हम यहाँ देखते हैं ये सिद्ध भगवान के तो कर्म है नहीं है कर्मों से छूट गए हैं जिनसे छूट सकते हैं वो चीज भिन्न है नहीं समझे दूध और पानी मिला हुआ है उबाल के उसको डिफरेंट कर सकते हैं दैट मीन्स इट इज डिफरेंट दो डिफरेंट एंटिटीज है तभी उनको सेपरेट कर सकते यदि वो एक में होते तो सेपरेट नहीं हो सकते तो सिद्धों में जो नहीं है वो हमारे में भी नहीं है अभी यहाँ अपना विषय नहीं चला है द्रव्य गुण पर्याय का वो साथ साथ चलेगी इसकी क्लैरिटी और बढ़ेगी पहले में पहले हम स्वयं एक जीव द्रव्य है अब ये जो मनुष्य रूप से हमें जो दिखाई दे रहा है वो शरीर है बाहर तो ये शरीर भी क्यों होता है उसकी रचना क्यों होती है तो हम पहले भी कर्मों की बात पहले में पहले ले लेंगे कि जीव और कर्म ये कर्म क्या है तो ये उद्गल लेने अभी वो जिसको हम कहते हैं मैटर उसके पार्टिकल्स है तो वो कहां से आए जीव के साथ तो जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं जैसे हम देखते हैं खदान में जो सोना मिलता है वो तो मिट्टी से और वो सब जो कुछ वहां उसका होता है उसमें मिली हुई अवस्था में होते हैं ना जिसको सुवर्ण पाषाण कहते हैं ये प्योर सोना तो खदान में नहीं मिलता है वो प्यूरिफाई किया जाता है और उसमें से वो जो कोई मिट्टी कालीमा वो सब कुछ दूर करके वो प्योर सोना बनता है तो उसमें वहां किसने मिलाया है तो नेचर में वो ऐसे ही पाया जाता है और बाद में वो प्रोसेस करके शुद्ध बनता है अब ये मनुष्य नहीं कहूंगी मैं परंतु जीव कहूंगी क्योंकि अकेला मनुष्य ही जीव नहीं है तीरियंच पशु पक्षी ये सारे जीव है ये वनस्पति वायु कायिक जल कायिक एक इंद्रिय ये सब जीव है देवगति के जो है वो भी जीव है नारकी भी जीव है तो जीव और कर्म अनादि से अनादि का अर्थ क्या है जिसको कोई बिगिनिंग नहीं है देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट हम कहेंगे बहुत पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट था तो भी उसको हम अनादि नहीं कहेंगे ये अनादि क्या होता है अन यानी नहीं है आदि यानी बिगिनिंग जिसके यानी बिगिनिंग लेग्स ऐसा जो है उसको कहेंगे अनादि तो कर्म और जीव अनादि से ही कैसी अवस्था में पाया जाता है बंधी हुई अवस्था में अब बंधी हुई अवस्था में है तो क्या होता है कि ये हर समय जीव कुछ ना कुछ मोह राग और द्वेष करता है हमारे मन में कुछ ना कुछ चलते हैं ना परिणाम हमारे और हम कभी किसी से क्रोध करते हैं कभी हमें किसी के प्रति लोभ हो जाता है किसी के प्रति प्यार होता है किसी के प्रति द्वेष होता है ये सारी बातें हर समय चलती है मोटी मोटी चीजें तो ख्याल में आती है परंतु ये नींद में भी बेहोशी में भी वो सतत उसका चलता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता रहता है तो इसको ये जो राग द्वेष के परिणाम है और मोह नहीं मिथ्यात्व है जो हमारी भ्रांति है उसके कारण क्या होता है हर समय नए नए कर्म तैयार रहते हैं उसको हम बनते हम कहेंगे वो कैसे आते हैं क्या होता है वो देखेंगे तो जो नए कर्म आए पूर्व में ऑलरेडी थे अब क्या होता है नए और आकर उसमें मिलते हैं और पुराने है उसका क्या होता है उसमें से कुछ निकल जाते हैं क्यों निकल जाते हैं क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि जो कर्म आते मिलते हैं तो वो किसी विशिष्ट काल के लिए जीव के साथ रहते ड्यूरेशन के लिए जब बंद होता है तो ये निश्चित होता है ये जीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका कि मैं इस जीव के साथ इतने साल तक रहूंगा तो रहते तो क्या करते हैं कुछ नहीं करते जब कर्म बनते नहीं हमने देखा नए कर्म आते हैं ये क्यों आते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे जो नए आते हैं उसको क्या कहना यहाँ एक नाम लिखा है बंध कर्म के जो नाम हम अभी यूटिलाइज करेंगे ना टर्मिनोलॉजी कर्म का बंध होता है ना क्या पुराने ऑलरेडी वहां पर है उसमें और नए आंखें मिलते हैं, उसको कहेंगे बंधन। पुराने कर्मों के साथ जुड़ जाते, पहले ऑलरेडी है उसमें नए आए हुए जुड़ जाते हैं, उसको कहेंगे बंधन। हुआ जो हमारे साथ पड़े हैं सत्ता में, जीव के साथ बंधे हुए अंदर ऑलरेडी है, उसको कहेंगे वो सत्ता। अब जब छोड़ के चले जाएंगे तो उसको कहेंगे उदय। हम कहते तो है हमारे क्या है, अंतराय का उदय है, हमारा असाता का उदय है। तो उदय है का अर्थ क्या है? वो कर्म परमाणु फल कौन से देते हैं? तो बंधने के समय फल नहीं मिलता है। देखो हम देखते हैं ना लौकिक में भी, कोई बहुत बुरे काम करता है, कोई चोरी करता है, खून करता है, इन्हें वहां राग द्वेष के अत्यंत तीव्र परिणाम करता है, और उस समय हम देखते हैं वो तो बहुत रिच है, हमें ऐसा भी लगता है हम इतना अच्छे हैं, हमारा अच्छा बिहेवियर है और हमारे संयोग तो ऐसे हैं, और वो इतने पाप करता है तो भी उसके संयोग इतने अच्छे हैं, ऐसा क्यों? अब ये बुरे का बंध कर रहा है, परंतु उदय किसका चल रहा है, फल किसका मिल रहा है? पहले किए हुए कर्मों का, पहले कभी किए होंगे, क्योंकि ये जो है ना सत्ता में जो पड़े थे अनेक करोड़ों वर्षों के, अब्जो वर्षों के, असंख्यात वर्षों के कर्म अंदर पड़े हुए होते हैं। बांधते समय तो मोह राग द्वेष कर रहा है, परंतु उसको उसमें मजा आ रही है। कोई किसी का बुरा कर रहा है, बुरा चाह रहा है, उसको ये पता नहीं कि यहां कैसे कैसे कर्म बन रहे हैं, परंतु फल किसका मिलता है? जब उदय में आता है। देखो बंध होता है, बंधने के बाद अनेक वर्षों तक, करोड़ों अब्जो असंख्यात वर्षों तक कर्म जीव के साथ पड़े रहते हैं, तब उसका कोई फल नहीं मिलता, जीव को उसका कोई एहसास नहीं होता। जब वो छूट कर चले जाते हैं, जिसको कहेंगे उदय हुआ, तो फल उसका तभी होगा। तो यह उसके हर समय कुछ ना कुछ फल भी मिल रहा है ना, जैसे बंद हो रहा है वैसे फल भी मिल रहा है। तो फल तो उसको पूर्व पुण्य का मिल रहा है, और अभी वर्तमान में कर रहा है पाप, उसका फल तो आगामी काल में भोगे बिना उसको कोई छुटकारा नहीं, वहां कोई वसीलेबाजी नहीं चलेगी। इंडिया में चलती ना वो तो अभी तो मजे आ रहे हैं उसको, और फिर उदय काल में रोना आता है। देखो कोई जीव अभी पुण्य का बंध कर रहा है, उसका भी उदय होगा कभी तो, कोई जीव अभी पाप का बंध कर रहा है, उसका भी उदय होगा कभी तो। तो ऐसा कब से चल रहा है? तो कभी वो पुण्य करता है और लगातार कोई पुण्य ही करता रहे। आपको ऐसा कोई जीव मालूम है कि पहले स्वर्ग में गया, फिर वहां से दूसरे में गया, वहां से चौथे में गया, ऐसी कोई स्टोरी सुनी आपने?
स्वर्ग में तो नहीं, पर शांतिनाथ भगवान ऐसे ही थे।
हाँ कैसे?
जैसे बोलते है कि चक्रवर्ती हुए, देव हुए, राजा हुए।
हाँ हाँ, आप तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हाँ क्या, कि एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग, दूसरे से चौथे स्वर्ग, से स्वर्ग में कोई जीव जा ही नहीं सकता।
हाँ,
बीच में मनुष्य होगा ही, और वो पुण्यवान इतने थे कि राजा हुए, फिर देव हुए, फिर चक्रवर्ती हुए, फिर देव हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और जब जब मनुष्य हुए तब तब वो मुनि अवस्था भी धारण की। लास्ट वो जो है ना चक्रवर्ती का, तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी, कामदेव भी थे, तो उन्होंने चक्रवर्ती में रहते हुए मोक्ष प्राप्त किया कि नहीं किया? चक्रवर्ती पद में थे जब मोक्ष प्राप्त किया?
मुनि पद
में थे। हाँ, चक्रवर्ती थे,
धर्म चक्रवर्ती बाद में हुए जब वो उन्होंने तीर्थंकर पद पाया। तो चक्रवर्ती पद छोड़कर उनकी पूर्व अवस्था बताते हैं ना, चक्रवर्ती थे, पर चक्रवर्ती रहते हुए मोक्ष गए कि नहीं गए, हमको ये निर्णय करना है। तो चक्रवर्ती पद छोड़कर मुनि दीक्षा अंगीकार की, फिर मुनि योगी जो कोई उनके वहां अंतरंग में, आत्मा में एकाग्रता हुई, तब उनके केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद वो तीर्थंकर हो गए, और तब जाके उनके बाद में जब आयु पूरी हुई तो उनके मोक्ष हो गए। ऐसा नियम है। कैसा? कि जो चक्रवर्ती पद में रहते हुए मरता है, देखो चक्रवर्ती पद किसको मिलता है, सम्यक दृष्टि को मिलता है। जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे जीवों को ऐसा उच्च पुण्य का बंधन नहीं होता। बंध की बात है, चक्रवर्ती पद कब मिलेगा, जब उसका उदय होगा, उस पुण्य का उदय होगा। परंतु ऐसा बढ़िया पुण्य किसके बनता है, सम्यक दृष्टि के बनता है। तो जिसको पहले सम्यक दृष्टि भी था, कोई जीव चक्रवर्ती का पुण्य भी बांधा और उसका उदय भी चल रहा है, परंतु ये कुछ गारंटी नहीं कि उसका सम्यक दर्शन चलता है। परिणाम बिगड़ जाते, क्या बिगड़ जाते, चक्रवर्ती पद में कितना भोग होता है मालूम है उसको, और हम सुनते ना इतने उसके 96,000 तो रानियां, इतने पुत्र, इतने सब, 6 खंड का राज है। तो वहां जो भोगने के परिणाम है, और चक्रवर्ती पद में ही यदि मर जाए तो 7वें नरक में जाना है।
साधु था तो स्वर्ग हाँ, मोक्ष जाए,
मोक्ष यदि वो मुनि पद अंगीकार करता है तो मोक्ष जाते हैं बहुत सारे, और एक आध दूसरा स्वर्ग में भी जा सकता है, क्योंकि उसके एक आध दो भव भी बाकी है। ये ऐसा मिला तो था चक्रवर्ती पद, उदयता था पुण्य का उदय, और नया कर रहा था पाप। वो छोड़कर अगर मुनिपद अंगीकार करते तो मोक्ष का पुरुषार्थ हो जाता, परंतु वो भोगने के परिणाम इन्हें पुण्य का उदय और नया पाप कर रहा है। तो वो पुण्य का उदय भोग कर तो छूट गया ना, वो कर्म का उदय आता है, परमाणु थोड़े ही कायम रहेंगे, पुण्य का उदय कायम नहीं रहता है, क्योंकि जितने परमाणु अंदर पड़े हैं उतना उदय में आएंगे, और वो खुट जाएंगे तो क्या होगा, पाप के परमाणुओं का उदय हो जाएगा। ये हमें तो कितनी बातें सुनते हैं, देखते हैं, ये कच्छ में क्या हुआ, इतने रईस कोई थे वहां पर, भूकंप आ गया तो देखते देखते कुछ नहीं सा हो गया, पुण्य का उदय चल रहा था, पाप का उदय किस समय, किस एक मिनट में, एक सेकंड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर सारे परमाणु पड़े रहते हैं। तो ये सुनकर इतना डर लगता है, अरे कभी हम पुण्य बांधते हैं, कभी पाप बांधते हैं, और वो नलीफाई नहीं होता अंदर में। हाँ, ये पुण्य थोड़ा, ये पाप थोड़ा अंदर चलता होगा, उसका प्लस माइनस करके हम गणित में कर दें ना, इतने प्लस है, प्लस 5 और माइनस 3
बैलेंस नहीं होता,
तो बैलेंस दो रह जाए, तो ऐसा वहां नहीं होता। तो प्लस 5 का भी भोगना पड़ता है, माइनस 3 का भी भोगना पड़ता है, जो कुछ है। तो ये कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य कभी पाप, तो इसमें से कुछ छुटकारा होना चाहिए। ऐसा कब से चल रहा है, तो अनादि से चल रहा है। अनादि का स्वरूप ही हमें मालूम नहीं है, 50-100 साल की बात करते, अरे बाप रे इतना लंबा ऐसा लगता है। परंतु यदि ये अनादि का स्वरूप समझेंगे हम, क्योंकि कोई नेवर एंडिंग बात है ना, कोई बिगिनिंग ही नहीं उसको, तो हमने कितने कितने पर्यायों में कहां कहां जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य बहुत अत्यंत कम बार प्राप्त होता है। वो कितने बार होता है क्या, उसकी हम चर्चा करेंगे, कभी आएगा विषय क्रम से, सभी आने वाला है। आज तो इंट्रोडक्टरी में कुछ बातें बताऊंगी और थोड़ा कुछ टर्मिनोलॉजी बताएंगे, तो ये सब विस्तार से सभी बातें आने वाली है, क्योंकि शुरू में तो हमें कुछ मालूम नहीं है और हम कोई नया विषय ले रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आपकी तो एक ही जिम्मेदारी है कि रेगुलरली आना, क्योंकि आप तो डेफिनेटली समझने वाले ही हो, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये बंध है और उदय है, और हर समय बंध हो रहा है, और हर समय पुराने कर्मों का उदय हो रहा है, तो इसमें से छूटने का कुछ मार्ग है कि नहीं है, और होगा तो वो क्या है, और है तो आज तक हमें क्यों नहीं प्राप्त हुआ, इसकी हम क्रम से चर्चा करेंगे। अब यहां हम देखते हैं, आपके पास जो पृष्ठ है 2 नंबर के पृष्ठ पर, गुजराती एक पुस्तक मुझे देना इतना बेन, तो आई कैन गाइड यू के पेज नंबर, वहां एक्स्ट्रा नहीं है, पेज नंबर पे नीचे में पड़ेगा, प्रत्येक जीव साथे,
पेज नंबर 2
जीवन कर्म अनादि थी,
नीचे से दूसरा पड़ेगा,
नीचे से दूसरा पड़ेगा, तुम्हें वाद्य शब्द क्या गुजराती कहने ट्राई टू अंडरस्टैंड हिंदी देन हाँ कोई पास पुस्तक नहीं होता लेगा हिंदी हिंदी एक ही है आप किसी को चाहिए
हिंदी कोई नहीं
है चलो
पेज नंबर पेज नंबर पे दूसरा पैराग्राफ
मैं हिंदी में पढ़ूंगी आप गुजराती में देखना उसमें हा? वैसे वर्ड टू वर्ड वैसा ही होगा जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं अर्थात जीव और कर्म का बंध अनादि से है बंध है ने क्या है जहां जीव है उसी प्रदेश में वहां कर्म भी है अनादि से ही है यानी किसी ने उनका मिलाया नहीं ऐसा नहीं कि पहले प्योर जीव था और बाद में कोई ईश्वर कोई दूसरा आदमी आके उस कर्म को जीव के साथ मिलाया हुआ ऐसा नहीं है किसी ने जोर जबरदस्ती से यह बंद कराया नहीं है ऐसा भी नहीं है कि जीव पहले सिद्ध समान शुद्ध था और बाद में कर्म आकर उससे बंधे हो हमने वो उदाहरण तो देखा था कि सोना और पत्थर का किसी ने मिश्रण नहीं किया है देखो यदि सोच लो इन केस सिद्ध भगवान हो जाए यानी प्योर हो जाए और बाद में फिर बाय चांस कर्म से मिल जाए तो फिर इतना एफर्ट करने से क्या फायदा तो कोई मोक्ष जाने का पुरुषार्थ नहीं करे नहीं समझे एक बार मोक्ष हो जाए और दोबारा कर्मों से बंध जाए कोई जीव तो फिर क्या फायदा उससे तो उससे भला मोक्ष का पुरुषार्थ ही नहीं करे ना क्योंकि एक बार मुक्त होना फिर दोबारा संसार में जन्म लेना अन्यमति कोई मानते हैं कि भगवान ने फिर अवतार लिया परंतु एक बार मुक्त होने के बाद ये स्वर्ग के देव है वो जन्म लेते हैं क्योंकि देव मनुष्य तिर्यंचर ऐसे तो चलता रहता है परंतु मोक्ष प्राप्त होने के बाद दोबारा कर्म बनते ही नहीं तो कर्म भी बंधे नहीं तो जन्म भी नहीं होगा यहाँ शरीर धारण भी नहीं करेगा जी तो पूर्ण मुक्त अवस्था है और केवल जीव प्योर होता है और वहां चला जाता है किसी सिद्ध क्षेत्र में वो बात नहीं है तो वो जीव की अनंत सुखमय ऐसी दशा जीव का जितना सारा जो कैपेसिटी है वो फुल फॉर्म में उसकी वहां प्रकट होती है अनंत ज्ञान होता है अनंत दर्शन वो बातें क्रम से हम सीखेंगे परंतु वहां अनंत सुख है तो ऐसी जो अवस्था है कि जीव की अपनी अवस्था है तो वो प्राप्त करने के लिए जीव के प्रयत्न होते हैं और एक बार सुखी हो गया और फिर दुखी होगा जन्म मरण करता रहा तो ऐसी बात नहीं हो सकती अब नीचे का पैराग्राफ प्रत्येक जीव से अनंतानंत कर्म परमाणु बंधे हुए ये अनंतानंत क्या होते हैं अनंत ने इन्फिनिट परंतु हम साइंस में तो इन्फिनिट इतना ही कहते हैं उसमें कोई भेद नहीं होते नो उसके कुछ छोटा इन्फिनिट बड़ा इन्फिनिट ऐसा कुछ होता नहीं परंतु जिनेन्द्र भगवान ने ये अनंत के भी अनंत भेद बताए और उसका अलग अलग डिस्क्रिप्शन भी किया है तो हम यहां इतना ही समझेंगे कि बहुत बड़ा अनंत इतने अनंतानंत परमाणु ये जीव के साथ बंधे हुए हैं इनमें जीव द्रव्य तो एक है अभी हम जीव यानी मैं जीव यानी कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो अभी ऐसा सोचना मैं तो एक हूं ख्याल है ना अभी हम यहां कितनी वस्तुएं उसको देखेंगे मैं तो एक हूं अरूपी हूं अरूपी समझाए छे ना अरूपे ने जेने न स्पर्श न गंध न रस न वर्ण ये देखा तो नहीं इंद्रियों के द्वारा उसको जानने में नहीं आता है केवल इनविजिबल कहने से नहीं चलेगा क्योंकि हवा भी इनविजिबल है परंतु वी कैन फील इट परंतु जीव ऐसा है कि किसी भी इंद्रियों के द्वारा वो जानने में नहीं आ जाता तो वो अरूपी है और यहां कैसा है चेतना गुणमय है यहां जो जानना 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 कार्य चल रहा है हर समय हम कुछ ना कुछ जानते हैं ना ये आपको दिखाई दे रहा है किसको दिखा यू डिंट से कि somebody else is seeing. You said के ये आई कैन सी इट I can see it. That means you are knowing yourself also. यानी यहाँ ज्ञान चल रहा है, इसकी तो बात चल रही ना. आप कहेंगे आप क्या हिंदी में बोलती, कुछ समझ में नहीं आता. तो ये समझ में नहीं आता, ये किसने समझा? You only decided or you only knew के I am not able to understand anything. तो understand कुछ नहीं होता है, ये किसने जाना? वो जानने वाला मैं हूँ. तो मैं जीव हूँ जब कहते हैं, तो मैं यहाँ एक जीव हूँ. कैसे हूँ? अरूपी चेतना गुण में. चेतना है ना ये जानने वाला, ज्ञान दर्शन मिलकर उसको चेतना कहते. चेतना ये अपना वर्णन चल रहा है अपना. यू हैव टू रिमेम्बर दीज फोर वर्ड्स कि मैं तो एक हूँ, अरूपी हूँ, चेतना गुणमय हूँ और संकोच विस्तार शक्ति से युक्त हूँ. असंख्यात प्रदेशी. वो असंख्यात प्रदेशी क्या है वो हम थोड़ी दिन में जानेंगे. यह संकोच विस्तार की बात आई है. जैसे हमारे हाथ में कोई एक स्पंज है, व्हेन यू प्रेस वो स्पंज का मैटर खला कम हो जाता है. क्या हो जाता है? मैटर कम होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम, उसका स्प्रेड जो है. उसमें जितना स्पंज है उतना तो पूरा है. कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वो तो संकोच हो गया उसका. नाउ इट इज ऑक्यूपाइंग स्मॉलर स्पेस. उसकी स्पेस अभी कम हुई, परंतु उसका जो मैटर है एक्चुअल स्पंज का वो उतना ही रहा. कोई इलास्टिक है और हम उसको खींचे तो क्या है? साइज तो बढ़ गया, तो क्या उसका मैटर बढ़ गया? क्या उसका जितना मैटर है उतना ही रहा, फिर वो अभी अधिक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ऐसे ही आत्मा में जितना उसका स्प्रेड है, आत्मा का जो एक्चुअल मैटर है उसका सब्सटेंस है वो उतना ही रहता है. जब चींटी बनता है तो उस देह में वो पूरा समा जाता है, और एलिफेंट हो जाएगा तो उसके प्रदेश और फैल जाएंगे. और एक हमने कभी सुना होगा महामत्स्य होता है, ये स्वयं भूरमण समुद्र का, वो कहाँ रहता है क्या है, तो कितनी उसकी बहुत बड़ा होता है. कितना बड़ा? तो योजन आपने शायद सुना होगा, तो 1000 योजन तो लंबा होता है, 500 योजन ऐसा होता है, 250 योजन ऐसा उसकी हाइट. तो 1000 योजन ऐसा है. अच्छा, एक योजन ने कितना ऐसा पूछते है मालूम है आपको? ये तो चार कोस का एक योजन होता है. चार कोस यानी 8 miles, और वो तो ऑर्डिनरी योजन हुआ, और यहाँ जो है वो महायोजन की बात होती है. महायोजन के लिए 500 टाइम्स करना उसको. 8 mile को 500 टाइम्स करो, 4000 miles. तो यहाँ से इंडिया कितना दूर है भाई? बारह भी पकड़ो ना, हमारे क्या जाता है. तो भी 3 योजन हो गया, और वो कितना है? 1000 योजन लंबा. हमें लगता है कुछ गप्पे आप खाते हैं. क्योंकि हमें वो पता नहीं है ज्योग्राफी पूरे पूरे न, हमें जितना वर्ल्ड मालूम है उसकी नहीं, पूरा जितना कुछ है उसकी पूरी जो ज्योग्राफी है जो भगवान ने बताई हुई है और जिसका पूरा रिटर्न डिस्क्रिप्शन है हमारे ग्रंथों में. तो इतनी बड़ी आत्मा का आकार हो जाता है, उतना देह धारण किया ना उसने, तो 1000 योजन लंबा है. तो पूरा उसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1000 × 500 × 250, 12,500 घन योजन. 12,500 करोड़ घन योजन. करोड़ 12,500 करोड़ घन योजन. क्यूबिक योजन हुआ ना, वी कैनॉट इमेजिन ऑल्सो. आत्मा इतना फैल गया, क्या हुआ? बड़ा हुआ?
नहीं,
बड़ा छोटा नहीं, वो है उतना ही है, जिसको हम असंख्यात प्रदेशी कहेंगे, परंतु वो विस्तार हुआ. और चींटी होता है या एक इंद्रिय जीव होता है, छोटा छोटा कोई बैक्टीरिया वायरस, तो इतना छोटा हो जाता है. ऐसी उसमें शक्ति है. ये मेरा पहले मैं कौन हूँ इसको निश्चित किया. मैं कौन हूँ? अपने अपने बारे में आप कहेंगे हाँ डॉक्टर उज्ज्वला बहन कौन है, एक है अरूपी है, वो नहीं. मैं स्वयं आत्मा हूँ, ऐसे हर एक को स्वयं स्व के बारे में सोचें। तो जीव द्रव्य मैं जीव हूँ, तो मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ, मैं अरूपी हूँ, चेतना गुणमय हूँ और असंख्यात प्रदेशी हूँ। वो कैसे है संकोच विस्तार वाले, अभी कर्म कैसे उसको देखना है। कर्म क्या है, तो कर्म पिंड है। कर्म पिंड ने कर्म है, इसको ही एक पार्टिकल नहीं है। कितने है पार्टिकल्स, अनंतानंत पार्टिकल्स है, उसका इकट्ठा हुआ है, उसको हम पिंड कहते हैं। जैसे मिट्टी में अलग अलग उसके रजकण होते हैं और उसको हम एक पिंड बना देते, गोला बना देते, तो वैसे ये कर्म पिंड है। वो अनंतानंत परमाणुओं का समूह है। हम कितने थे, एक। कर्म कितने हैं यहाँ पर, अनंत। हम हैं अरूपी, कर्म है रूपी, क्यों, वो पुद्गल का है, कर्म रूपी है, पुद्गल है ना, वो पुद्गल रूपी है, वो उसकी पहचान आप करेंगे फिर द्रव्यानुयोग में। तो मैं जीव हूं और ये कर्म पुद्गल है, ये पहले नक्की करना है। मैं चेतन हूं, कर्म कैसा है, अचेतन है, जड़ है, वो कुछ नहीं जानता। वो नहीं जानता कि इस जीव को अच्छा फल देना है, इसको बुरा, इसको स्वाध्याय में रोकना है जाने से। कर्म कुछ नहीं जानता है बेन। हम कहते हैं ये सारा कर्म का फल है, क्या करें, हमारा बहु आकरा कर्म ना फल। कर्म को ऐसे समझता होगा ना, इसको अच्छा फल देना, इसको बुरा देना, क्यों बेन। वो जड़ है, वो कुछ नहीं करता है, वो तो बताने वाला है जीव के परिणाम कैसे चलते। आपके या आपके सब ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग होता है ना, आपका बैरोमीटर क्या कहते हैं आप, तो आप कहते आज इतना टेम्परेचर एटमोसफियर में, तो वो बताता है क्या, बनाता है टेम्परेचर, बताने वाला है, इट्स ए इंडिकेटर। वैसे कर्म हमारे परिणामों के इंडिकेटर है। ये उदय वाले कर्म क्या कहते हैं, आपने पहले ऐसे पाप परिणाम किए थे, अभी उसका फल चल रहा है। और बंधने वाले कर्म, अभी जो क्या कर रहे हैं उसका वहां बंद चल रहा है, तो वहां उसके सारे आलेख चलते हैं, ये आपके परिणामों का आयना है। तो वो अपने को कुछ भला बुरा अपना कर नहीं सकता है, परंतु जीव उसमें कैसे मान्यता करता है और क्या क्या होती है, वो बात हम क्रम से देखेंगे। तो मैं तो एक हूं, अरूपी हूं, चेतना गुणमय हूं और असंख्यात प्रदेशी हूं। यहां कर्म पिंड कौन है, अनंत अनंत कर्म परमाणुओं का समूह है, रूपी है, अचेतन है, और उसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। अब वो प्रत्येक परमाणु अलग अलग है और मैं तो एक अखंड हूं। अब कर्म पिंड में से प्रत्येक समय में कुछ परमाणु छूट कर निकल जाते हैं, उसी तरह प्रत्येक समय में कुछ नए परमाणु आकर उसमें जुड़ जाते हैं। हमने देखा था, नए आकर जुड़ जाते हैं उसको कहेंगे बंध, और छूट कर निकल जाते हैं उसको कहेंगे उदय। परमाणु आकर पुराने कर्म के साथ जुड़ जाते हैं, बंधते हैं, उसे बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के साथ जुड़ सकता है, बन सकता है, नहीं समझे। जैसे हम वो बूंदी का लाडू बनाते हैं ना, क्या करते हैं, वो तो छुट्टी छुट्टी थी, फिर उसको दबाया और वो तो उसका एक लड्डू बन गया। वहां अनेक अलग अलग छुट्टी छुट्टी है ना, वो वैसे ही यहाँ कहते हैं, ये जो कर्म परमाणु नए नए आकर मिलते हैं और पुराने में से, उसमें जैसे हमने लड्डू बनाया, फिर और कुछ उसमें और दबाया, उन पहले वाले कुछ छूट गए, तो हम क्या कहेंगे, नए आकर मिले और पुराने में से कुछ छूट गए। तो जो बनते हैं उसे बंध कहते हैं, और छूट कर निकल जाते हैं उनको उदय कहते हैं। आपने गाय को बांधी हुई देखा है, रस्सी से, रस्सी से गाय को बांधते कि नहीं बांधते, क्या रस्सी से रस्सी को ही बांधते हैं, रस्सी की गांठ क्या है से बांधी, गाय से बांधी, गाय की पूछ से बांधी, ये रस्सी है, ये उंगली है मेरी और इसकी गांठ बांधी, रस्सी को रस्सी से बांधा है, उंगली तो मेरी उंगली है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, है ना, ऐसे कर्म आकर कर्म में मिलते हैं। जीव छुट्टा है फिर भी हम उसको क्यों नहीं जानते, उसकी बात करेंगे अभी हम। हमें तो देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलता है, एक नए नजरिए से हम उसकी ओर देख सकते हैं। तो यहाँ कहते कि बंद किसको कहना, नए कर्म आकर ऑलरेडी जो है उसमें जुड़ जाते हैं उसको बंद कहेंगे, ऑलरेडी है उसमें से कुछ निकल जाते हैं उसको उदय कहेंगे। वो कौन से निकल जाते हैं, कौन से बनते हैं, उसकी चर्चा करेंगे हम अब यहाँ और देखते हैं। तो ये जो बंद होता है ना, परमाणु आकर मिले हैं, उसको हम चार प्रकार से समझाएंगे। कार्य क्या हुआ है, कुछ नए परमाणु आकर वहां जुड़ गए, अब उसको हम चार नाम यहाँ देखे लिखे हैं। एक है प्रकृति बंध, दूसरा है प्रदेश बंध, हम यहाँ दूसरी हाँ प्रदेश बंध पुस्तक में इसको पहले लिया, एक ही बात है, पहला दूसरा उसमें कुछ नहीं होता है। तो एक है प्रकृति बंध, एक है प्रदेश बंध, एक है स्थिति बंध और एक है अनुभाग बंध। अब मैं एक एक नाम लूंगी, आप सबको रिपीट करना है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। कौन बताएगा, आपको पढ़ना है यहाँ देखकर। हाँ बोलिए ये सब नाम,
प्रकृति प्रतिस्थिति अनुभाग,
हाँ उसके पीछे बंध बंध लगाना। हम शॉर्ट फॉर्म कर दिए ना, अच्छी बात है, याद करने के लिए तो ठीक है, परंतु कहने के लिए हम उसके आगे बंद लिखेंगे तो अच्छा है। बेन आप बोलेंगे
प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद,
अनुभव। बहुत अच्छा, हमारे भाइयों में से कौन कहेंगे। हाँ हाँ बोलिए भाई आप पीछे। हाँ
प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभव।
बहुत अच्छा उजाला, कैन यू रिपीट। हाँ से प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद। आई नो यू कैन नॉट रीड दिस, बट इट्स गुड इफ यू कैन मेक सम एफर्ट्स। ओके तो ये क्या होता है, प्रकृति क्या है, प्रदेश क्या है, हम कुछ नहीं जानते, तो जानने के लिए बैठे ना, है ना, सब जानेंगे इसको। अभी हम यहाँ पढ़ते थोड़ा, देखो बंद के चार भेद है, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो हम पहले इसको देखेंगे क्या है। तो जब कर्म बनते हैं, ये जो पार्टिकल्स आते हैं, कारमांड के पार्टिकल्स आते हैं, तो वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। अभी हमने नाम सुने नहीं, परंतु अभी सुनेंगे, फिर उसको बाद में फिर उसको देखेंगे। एक होते हैं ज्ञानावरणी, देर आर एट टाइप्स ऑफ कर्म, जो एट टाइप्स है उसको कहेंगे एट प्रकृति, आठ जो टाइप्स है अलग अलग उसको क्या कहेंगे, प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं, स्वभाव को। हम क्या कहते हैं, ये जरा क्रोध प्रकृति का है, जरा संभाल के रहना, इसकी प्रकृति कैसे थोड़ी गर्म मिजाज के, ऐसा कहते हैं ना, वो प्रकृति कहते हैं। तो ये जो आठ अलग अलग कर्म है उनका अपना अपना नेचर अलग है, प्रकृति यानी नेचर, उनका अपना अपना नेचर अलग है और उसका अपना अपना फल अलग होगा। तो उसके इसके लिए उसको कहते हैं प्रकृति। जैसे हम कहते हैं कोई ज्ञानावरण प्रकृति है, ये दर्शनावरण है, अंतराय तो आपने सुना है, ये उस प्रकृति का नाम है। तो जो कर्म प्रकृति बनती है, वैसे जो आयु कभी कभी बनती है, सात प्रकृतियां जो आठ में से, वो हर समय बनती ही रहती है। तो ये हुआ प्रकृति बंध। दूसरा है प्रदेश बंध, यहां हमने प्रदेश बंध दूसरे को ले, यहां पहले लिखा, कभी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रदेश क्या होता है, नंबर ऑफ परमाणु एक समय में, समय कितना छोटा है उसको भी देखेंगे हम, एवरी मोमेंट जिसको हम कहेंगे, मैं समय इतना सूक्ष्म है कि एक सेकंड जो हमें छोटा में छोटा मालूम है। अभी यहां ऐसे कैमरे भी निकले ना, या ये आपके ओलंपिक्स वगैरह चलते तो उसमें छोटी वो घड़ी होती है, तो एक सेकंड के भी 10,000 भाग। अब ये कोई एस्ट्रोनॉमी वगैरह में देख, ये इसमें नासा में या दूरबीन वो लगाते हैं ना, तो उसमें तो एक सेकंड का एक अब्ज इतना बार, फिर भी उससे ये कितना छोटा है, कि एक सेकंड में असंख्यात होते हैं समय। एक आवली नाम का माप है समयों का, आवली। तो एक सेकंड में आवली कितनी होती है? तो सैकड़ों होती है, सैकड़ों यानी हजारों। तो एक सेकंड में हजारों आवली होती है और एक आवली में असंख्यात समय होते हैं। असंख्यात यानी इन्यूमरेबल होते हैं, उसका माप बहुत बड़ा है। हम अभी उसको असंख्यात ही समझेंगे क्योंकि वो विषय अंतर हम नहीं चाहते। जब कभी उसका मौका आएगा तो उस पर अधिक चर्चा करेंगे। तो इतना समय सूक्ष्म है, वो मिनिमम पॉसिबल जो टाइम का जो मिनिमम यूनिट है, मिनिमम यूनिट जो पैसेज ऑफ टाइम का है, उसको हम समय कहेंगे। तो एक एक समय में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर्म परमाणु आते हैं उसको कहेंगे प्रदेश बंध। तो कितने पार्टिकल्स आते हैं? तो कहते अनंत आते हैं। आप कहेंगे आपका सब अनंत में ही चलता है वहां, जिसको फिगर्स का अट्रैक्शन है ना कि हमने इतने लाख कमाए हैं, हाँ, तो उसको तो ये पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें असंख्यात और अनंत की कमाई होती है। हर समय में हम अनंत की कमाई करते कर्मों की। तो जितने नंबर ऑफ आते हैं जिसको, उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। समय तो अभी बताया, बद्ध है ने बंधना, प्रबद्ध है ने विशेष तरीके से। एक समय में जितना लॉट बनता है कर्मों का, अनंतों का, उसका नाम क्या है? एक समय प्रबद्ध। ये उसकी टर्मिनोलॉजी है और उसमें कुछ नहीं है। तो उसमें भी कभी कम, थोड़ा कम बंधेंगे, कभी ज्यादा बंधेंगे। बंधेंगे तो अनंत, परंतु उसमें जो कोई वेरिएशंस है, तो कितने नंबर ऑफ परमाणु बंधे हैं उसको कहेंगे प्रदेश बंध। प्रदेश यानी परमाणु एक प्रदेश ही होता है, तो जितने परमाणु बनते उसको प्रदेश कहते, ये प्रदेश बंध हुआ। अब ये दो नाम और है, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो ये स्थिति बंध किसको कहना? तो जब कर्म बनते हैं तो वो कितने काल तक जीव के साथ रहेंगे उसका ड्यूरेशन निश्चित होता है। ये ड्यूरेशन कौन निश्चित करता है? यहाँ तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, लीज पर घर लेते हैं, जो कुछ करते हैं, तो इतने एक साल का है, 11 मंथ्स का, जो कुछ होगा। वैसे ये कर्म की जो स्थिति कौन डिसाइड करता है?
राग द्वेष कसाई की परिणति।
बहुत अच्छा। ये जो जीव के मोह राग द्वेष परिणाम है उसकी तीव्रता कितनी है, उसमें भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो वहां उसके अकॉर्डिंगली यहाँ ड्यूरेशन भी नक्की होता है, स्थिति बंध। तो ये जो प्रकृति और प्रदेश बंध क्यों होता है, उसको क्यों डिसाइड करता है, कौन करता है? हाँ, योग। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। जितना योग ज्यादा, देखो योग का अर्थ हम जितने हलचल करते वो योग ज्यादा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। फिर वो क्यों होता है, क्या है, उसकी डिटेल्स हम देखेंगे। कहते तो है मन वचन काय की प्रवृत्ति, परंतु मन भी जड़ है, वचन भी जड़ है और काया भी जड़ है। तो ये जड़ पुद्गल के कारण हमें पुद्गल का बंध होगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ जीव का जो योग है, योग का अर्थ होता है आत्म प्रदेशों का कंपन। वो क्यों होता है, कौन से कर्मों से होता है, क्या होता है, उसकी डिटेल्स है, उसको हम बाद में देखेंगे। हमें इतना ही देखा है, देखना है कि योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बंध होता है। ये हमने अभी अनुभाग नहीं देखा, देखेंगे। तो जब हम कषाय कहते ना, देखो ये बंध के कारण अभी हम शॉर्ट में देखेंगे, जब कभी उसका विषय आएगा फिर डिटेल में जाएंगे। तो जीव को बंध क्यों होता है, तो उसके कारण है मिथ्यात्व, अविरति। अभी तो आपको नाम ही सुनना है, इसके वर्णन तो बाद में देखेंगे। हा? प्रमाद, कषाय और योग। हाँ, जिसका अभ्यास है उन्होंने तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में पहला सूत्र मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग इति बंध हेतवा, ये बंध के हेतु है, बंध के कारण ये 5 है। उसमें से जो पहले 4 है ना, कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति यानी जो असंयम है, प्रमाद है और कषाय है। इन सब से, इन सबको मिलकर कषाय कह दिया, एक शॉर्ट नाम कषाय इसका अंतिम है, इसलिए सबका नाम कषाय रख दिया। इसमें कौन कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, सब इसमें आ गए और एक योग अकेला रहा। तो योग के कारण होता है प्रदेश बंधन प्रकृति बंधन, और कषाय यानी मिथ्यात्व अविरति प्रमाद और कषाय के कारण होते स्थिति बंधन अनुभाव। जितने कषाय तीव्र है उतने लंबी स्थिति वाले कर्म बनते, और जितना कषाय मंद है उतने कम स्थिति वाले बनते। अब ये अनुभाग बंध क्या होता है? अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। कर्म फल कब देता है, हमने कब देखा कहा उसको? हाँ, कर्म फल कब देता है? जब उदय में आता है तब। सत्ता में पड़े हुए उसका कोई फल नहीं है, परंतु जब बनता है ना तभी उसमें उन परमाणुओं में कितना फल देना ये शक्ति उसमें निश्चित होती है। उसको कहते हैं उस कर्म का अनुभाग। बंधते समय उस परमाणु में कितना अनुभाग पड़ा है उसको कहेंगे अनुभाग बंध। तो जहां हम कहते जो कोई तीव्र कषायी है, तीव्र लोभी, तीव्र क्रोधी ऐसा है, तो उसका अनुभाग कैसा होगा? ज्यादा। कौन से कर्मों में? पाप कर्मों में। क्योंकि अभी कर्म में भी दो भेद हो जाएंगे, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो जो तीव्र कषायी है उसके पाप कर्मों में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा। अब जो मंद कषायी है, पुण्य के परिणाम कर रहा है, उसके पुण्य कर्मों में अनुभाग ज्यादा होगा। डिफरेंस है ना उसमें। जैसे हम स्वाध्याय करते हैं, आत्मा की बात सुनते हैं, तो उसमें अभी हम मंद कषाय है, तो अभी उसमें कौन कौन से कर्म बनते हैं क्या, उसकी डिटेल हम बाद में देखने वाले हैं। अभी तो हमें टर्मिनोलॉजी देखनी है। चार प्रकार के जो यहाँ बंध बताए हैं, एक है प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। देखो इसमें हम थोड़ा पुस्तक में से देखते हैं, फिर हम कल इसको हम और चालू रखेंगे। ये आठ कर्मों के नाम हम कल देखेंगे। उसके नीचे वाला जो है तीसरे पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ है, तीसरे पृष्ठ पर पहली लाइन, इसमें तो आगे पीछे है। कर्म जब बनते हैं उसी समय यह निश्चित होता है कि वे जीव के साथ कितने काल तक रहेंगे, उस काल को कर्म की स्थिति कहते हैं, और बंध के इस भेद को स्थिति बंध कहते हैं। अपनी स्थिति पूरी होने पर कर्म छूट जाते हैं, निखिर जाते हैं, उसको उदय कहते हैं। कर्म का उदय होता है तब उसका फल यानी अनुभाग मिलता है, जिसको हम कहेंगे रस मिलता है, उसका फल मिलता है। यह कब निश्चित होता है? बंधने के समय ही निश्चित होता है वो कर्म कितना फल देगा। इस तरह से अभी हमने बंध के चार प्रकार देखे है, इसकी बात हम कल और देखेंगे विस्तार से। इसको फिर रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा समय हो चुका है, हम यही रुकते हैं। बोलो चौबीसों भगवान की जय।